नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। पाली में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र अर्थात धर्म चक्र को चलायमान करने वाला भगवान बुद्ध का पहला उपदेश। एकम समयम भगवा वाराणसीयम विहरति इसिपतने मिगदाये। एक समय भगवान बुद्ध मृगदाव ऋषिपत्तन अर्थात सारनाथ वाराणसी में विहार कर रहे थे। तत्र खो भगवा पंचवग्गीय भिक्षु आमंतेसी, वहाँ उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं अर्थात कुंडय वप भद्य महानाम तथा अस जी, जो जब वे कठिन तपस्या द्वारा जागृति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे तो वे उनके साथ उस समय रहा करते थे, को संबोधित किया। मध्यम मार्ग। द्वे मे भिक्खवे अंता पब्बजतेन न सेवितब्बा। भिक्खुओं, किसी प्रव्रजित या भिक्षु को इन दो अतिशयों या चरम पंथों को नहीं अपनाना चाहिए। कतमे द्वे, वे दो क्या हैं? यो चायम कामेशु कामसुखल्लिकानियोगो हीनो गम्मो पोतुज्जनिको अनर्यो अनर्थ संहितो। यो चायम अत्त किल मथानियोगो दुखो अनर्यो अनर्थ संहितो। एक तो वह अतिशय है जो कामुक इच्छाओं से संबंधित है, भोग विलासी जीवन के कामुक आनंद में आसक्ति जो निम्न कोटि की है, अश्लील साधारण लोगों से जुड़ी अधम तथा लाभहीन है। दूसरी ओर स्वयं को घोर यातना पहुंचाने या क्लांत करने का वह चरम पंथ जो पीड़ामय अधम एवं लाभहीन है। एते खो भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम्म मझिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणी याणकरणी उपसमाय अभियाय संबोधाय निब्बानाय संबत्तति। तो भिक्खुओं, इन दोनों चरम पंथों को त्याग कर तथागत अब मध्यम मार्ग में पूर्णतः जागृत हो गए हैं, जो चक्षु देने वाला, ज्ञान पैदा करने वाला और उपशम अर्थात पूर्ण शांति, अभिज्ञा अर्थात अलौकिक मानसिक शक्तियां, संबोधि एवं निर्वाण प्राप्त कराने वाला है। अष्टांगिक आर्य मार्ग। कतमा चसा भिक्खवे मझिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणी याणकरणी उपसमाय अभियाय संबोधाय निब्बानाय संवत्तति। और भिक्खुओं, यह मध्यम मार्ग क्या है जिसमें तथागत पूर्णतः जागृत हो गए हैं, जो चक्षु देने वाला, ज्ञान पैदा करने वाला और उपशम अभिज्ञा संबोधि एवं निर्वाण प्राप्त कराने वाला है। अयमेव अरियो अठंगिको मग्गो से यथिदम सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। वह यही अष्टांगिक आर्य मार्ग है, अर्थात एक सम्यक दृष्टि, दो सम्यक संकल्प या विचार, तीन सम्यक वाणी, चार सम्यक कर्मांत या कार्य, पांच सम्यक आजीविका, छह सम्यक व्यायाम या प्रयास, सात सम्यक संज्ञान या स्मृति पाली में सति, तथा सम्यक समाधि या एकाग्रता। अयम खोसा भिक्खवे मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्ध चक्षुकरणी यानकरणी उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवत्तति। भिक्षुओं, यही वह मध्यम मार्ग है जिसमें तथागत पूर्णतः जागृत हो गए हैं, जो चक्षु देने वाला, ज्ञान पैदा करने वाला और उपशम अभिज्ञा संबोधि एवं निर्वाण प्राप्त कराने वाला है। चार, आर्य सत्य। इदं खोपन भिक्खवे दुखम अर्य सत्यम जातिपि दुखा जरापि दुखा व्याधिपि दुखो मरणमपि दुखम अप्ये ही संपयोगो दुखो पिये ही विपयोगो दुखो यम पिच्छम न लभति तंपि दुखम संखित्तेन पंच उपादान खंदा दुखा। तो भिक्खुओं, दुख का आर्य सत्य यह है, जन्म दुखदाई है, वृद्धावस्था दुखदाई है, रुग्णावस्था दुखदाई है, मृत्यु दुखदाई है, अप्रिय के साथ संपर्क दुखदाई है, प्रिय से वियोग दुखदाई है, अप्राप्य की लालसा दुखदाई है। संक्षेप में पांचों स्कंध, पाली में खंध अर्थात रूप, संवेदना, संज्ञा पाली में संज्ञा, संस्कार पाली में संखार यानी अनुबंधित मनोदशाएं तथा विज्ञान पाली में विज्ञान यानी चेतना, जो हमारे अस्तित्व को नए सिरे से बनाए रखते हैं, सभी दुखदायी है। इदं खोपन भिक्खवे दुख समुदयम अर्य सच्यम यायम तणहा पोनोभविका नंदिराग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी सेयत्थिदं। कामतणहा भवतणहा विभवतणहा। अब यह भिक्खुओं, दुख के उत्पन्न होने का आर्य सत्य है, वह है तरस, लालसा या तृष्णा पाली में तणहा, जिसके कारण पुनर्जन्म होता है, जिसका विभिन्न प्रकार की तमाम इच्छाओं का साथ होता है, इन इच्छाओं के लिए जुनून होता है और उनकी पूर्ति से आह्लाद। ये तृष्णाएँ हैं काम तृष्णा अर्थात कामुक इच्छा की लालसा, भव तृष्णा अर्थात शाश्वत अस्तित्व की लालसा तथा विभव तृष्णा अर्थात अस्तित्वहीनता की लालसा। इदं खोपन भिक्खवे दुख निरोधम अर्य सच्यम यो तस्यायेव तणहाय अशेष विराग निरोधो चागो पटि निस्सग्गो मुत्ति अनालयो। अब यह भिक्खुओं, दुख के अंत का आर्य सत्य है, वह है लालसा की समाप्ति, संपूर्ण अनुपस्थिति, उसका त्याग, उससे मुक्ति एवं अनासक्ति। इदं खोपन भिक्खवे दुख निरोध गामिनी पटिपदा अर्य सत्यम अयमेव अर्यो अठंगिको मग्गो सेयत्थिदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कमंतो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। अब यह भिक्खुओं, दुख का अंत करने वाले मार्ग का आर्य सत्य है और वह है यही अष्टांगिक आर्य मार्ग अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत या कार्य, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम या प्रयास, सम्यक संज्ञान या स्मृति पाली में सति तथा सम्यक समाधि या एकाग्रता। चार, आर्य सत्य के बारह पहलू। इदं दुखम अर्य सच्यन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुम उत्पादी याणम उत्पादी पंया उत्पादी विज्ञा उत्पादी आलोको उत्पादी। यह दुख का आर्य सत्य है धर्म के इस विचार से, जिसे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था, मुझ में चक्षु ज्ञान प्रज्ञा विद्या एवं आलोक उत्पन्न हुए। तम खो पनिदम दुखम अर्य सत्यम परियेयन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुम उत्पादी याणम उत्पादी पंया उत्पादी विज्ञा उत्पादी आलोको उत्पादी। इसके अतिरिक्त दुख का यह आर्य सत्य परिज्ञेय है अर्थात इसे पूरी तरह मालूम करना आवश्यक है धर्म के इस विचार से, जिसे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। मुझमें चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई एवं आलोक उत्पन्न हुआ। तम खो परिदम दुखम अर्यसच्चम परिज्ञातन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अनुसुतेषु धम्मेषु चक्षुम उत्पादी, ज्ञानम उत्पादी, प्रज्ञा उत्पादी, विद्या उत्पादी, आलोको उत्पादी। इसके अतिरिक्त दुख का यह आर्य सत्य परिज्ञात कर लिया है धर्म के इस विचार से, जिसे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। मुझमें चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई एवं आलोक उत्पन्न हुआ। इदम दुख समुदयम अर्य सच्चन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अनुसुतेषु धम्मेषु चक्षुम उत्पादी, ज्ञानम उत्पादी, प्रज्ञा उत्पादी, विद्या उत्पादी, आलोको उत्पादी। यह दुख के समुदय का आर्य सत्य है धर्म के इस विचार से, जिसे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। मुझमें चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई एवं आलोक उत्पन्न हुआ। तम खो परिदम दुख समुदयम अर्य सच्चम पहातबन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अनुसुतेषु धम्मेषु चक्षुम उत्पादी, ज्ञानम उत्पादी, प्रज्ञा उत्पादी, विद्या उत्पादी, आलोको उत्पादी। इसके अतिरिक्त दुख समुदय का यह आर्य सत्य प्रहाण के योग्य है धर्म के इस विचार से, जिसे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। मुझमें चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई एवं आलोक उत्पन्न हुए। इदं दुख निरोधम अर्य सच्चन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुम उत्पादी, ज्ञानम उत्पादी, प्रज्ञा उत्पादी, विद्या उत्पादी, आलोको उत्पादी। यह दुख के निरोध या अंत का आर्य सत्य है धर्म के इस विचार से, जिसे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। मुझमें चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई एवं आलोक उत्पन्न हुआ। तम खो परिदम दुख निरोधम अर्य सच्चम सच्चिका तब्बन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अनुसुतेषु धम्मेषु चक्षुम उत्पादी, ज्ञानम उत्पादी, प्रज्ञा उत्पादी, विद्या उत्पादी, आलोको उत्पादी। इसके अतिरिक्त दुख निरोध का यह आर्य सत्य साक्षात्कार किए जाने योग्य है धर्म के इस विचार से, जिसे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। मुझमें चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई एवं आलोक उत्पन्न हुआ। तम खो परिदम दुख निरोधम अर्य सच्चम सच्चिकतन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अनुसुतेषु धम्मेषु चक्षुम उत्पादी, ज्ञानम उत्पादी, प्रज्ञा उत्पादी, विद्या उत्पादी, आलोको उत्पादी। इसके अतिरिक्त दुख निरोध के इस आर्य सत्य का साक्षात्कार हो गया है धर्म के इस विचार से, जिसे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। मुझमें चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई एवं आलोक उत्पन्न हुआ। इदम दुख निरोध गामिनी पटिपदा अर्य सच्चन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अनुसुतेषु धम्मेषु चक्षुम उत्पादी, ज्ञानम उत्पादी, प्रज्ञा उत्पादी, विद्या उत्पादी, आलोको उत्पादी। यह दुख को नष्ट कराने वाले मार्ग का आर्य सत्य है धर्म के इस विचार से, जिसे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। मुझमें चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई एवं आलोक उत्पन्न हुआ। तम खो परिधम दुख निरोध गामिनी पटिपदा अर्य सच्चम भावितब्बन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुम उत्पादी, ज्ञानम उत्पादी, प्रज्ञा उत्पादी, विद्या उत्पादी, आलोको उत्पादी। इसके अतिरिक्त दुख को नष्ट कराने वाले मार्ग का यह आर्य सत्य भावित किए जाने योग्य है धर्म के इस विचार से, जिसे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। मुझमें चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई एवं आलोक उत्पन्न हुआ। तम खो परिदम दुख निरोध गामिनी पटिपदा अर्य सच्चम भावितन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अनुसुतेषु धम्मेषु चक्षुम उत्पादी, ज्ञानम उत्पादी, प्रज्ञा उत्पादी, विद्या उत्पादी, आलोक को उत्पादी। इसके अतिरिक्त दुख को नष्ट कराने वाले मार्ग का यह आर्य सत्य भावित हो गया है। धर्म के इस विचार से, जिसे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था, मुझ में चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई एवं आलोक उत्पन्न हुआ। यावकी वंच मे भिक्खवे इमेषु चतुषु अर्यसत्येषु एवं तिपरिवट्टम द्वादशाकारम यथाभूतम ज्ञानदर्शनम न सुविशुद्धम अहोसि नैव तावाहम भिक्खवे सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सश्रमण ब्रह्मणीया पजाय सदेव मनुष्याय अनुत्तरम संभाषम सम्मा संबोधिम अभिसंबुद्धोति पच्चन्यासिम। भिक्खुओं, जब तक मैं ज्ञान के इन 12 पहलुओं द्वारा तथा 4 आर्य सत्यों के 3 चरणों के सही विकास के ज्ञान के माध्यम द्वारा पूरी तरह परिष्कृत नहीं हो गया था, तब तक मैंने यह घोषित नहीं किया कि मैं सम्यक संबोधि में अभिसंबुद्ध हो गया हूँ। जो मार एवं ब्रह्मा समेत देवलोकों में श्रमण ब्राह्मणों की इस पीढ़ी में और देव मनुष्यों के इन लोकों में अद्वितीय है। यतो च खो मे भिक्खवे इमेषु चतुषु अर्यसत्येषु एवं तिपरिवट्टम द्वादशाकारम यथाभूतम ज्ञानदर्शनम सुविशुद्धम अहोसि अथाहम भिक्खवे सदेवके लोके समार्के सब्रह्मके सश्रमण ब्रह्मणीया पजाय सदेव मनुष्याय अनुत्तरम सम्मा संबोधिम अभिसंबुद्धोति पच्चन्यासिम। किंतु भिक्खुओं, जब मैं ज्ञान के इन 12 पहलुओं द्वारा तथा 4 आर्य सत्यों के 3 चरणों के सही विकास के ज्ञान के माध्यम द्वारा पूरी तरह परिष्कृत हो गया, तब मैंने यह घोषित किया कि मैं सम्यक संबोधि में अभी संबुद्ध हो गया हूँ। जो मार एवं ब्रह्मा समेत देवलोकों में श्रमण ब्राह्मणों की इस पीढ़ी में और देव मनुष्यों के इन लोकों में अद्वितीय है। याणच्च पन मे दर्शनम उदपादि अकुप्पा मे विमुक्ति अयमंतिमा जाति नत्थिदानी पुनर्भवूति। तब यह दर्शन एवं ज्ञान मुझ में उत्पन्न हुआ कि मेरी विमुक्ति निश्चय है, यह मेरा अंतिम जन्म है, अब मेरा पुनः जन्म नहीं होगा। याणंच पन मे दर्शनम उत्पादि अकुप्पा मे विमुक्ति अमंतिमा जाति नत्थिदानी पुनर्भवूति। तब यह दर्शन एवं ज्ञान मुझ में उत्पन्न हुआ कि मेरी विमुक्ति निश्चय है, यह मेरा अंतिम जन्म है, अब मेरा पुनः जन्म नहीं होगा। इदम अवोच भगवा, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। अत्तमना पंचवग्या भिक्खु भगवतो भाषितम अभिनंदुन्ति। भगवान बुद्ध के वचन से प्रसन्न पंचवर्गीय भिक्षु आनंद विभोर हो गए। कुंडय्य की जागृति और देवताओं तथा ब्रह्माओं का आह्लाद। इमस्मिंच पन व्यय्याकरणस्मिन् भयमाने आयस्मतो कुंडय्यस्य बीरजम वीतमलम धम्मचक्षुम उदपादि यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मन्ति। साथ ही साथ आयुष्मान कुंडय्य में विरज विमल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। जो कुछ समुदाय धर्म वाला है वह सब निरोध धर्म वाला है, अर्थात जो कुछ उत्पन्न होता है उसका अंत भी होता है। पवत्तिते च पन भगवता धम्मचक्के भुम्मा देवा सद्द मनुष्यावेशम एतम भगवता वाराणसीयम इसिपतने मिगदाये अनुत्तरम धम्मचक्कम पवत्तितम अपटिवत्तियम समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मणा वा केनचि वा लोकस्मिन्। और जब भगवान बुद्ध ने इस प्रकार धर्मचक्र चलायमान किया तो भूधर देवताओं ने यह घोषणा की। मृगदाव ऋषिपत्तन वाराणसी में भगवान बुद्ध ने अनुत्तर धर्म चक्र का प्रवर्तन किया है, जिसे न कोई श्रमण, न कोई ब्राह्मण, न कोई देवता, न कोई मार, न कोई ब्रह्मा और इस लोक का न कोई और पलट सकता है। भूधर देवताओं की घोषणा सुनकर चतुर महाराजिक देवताओं ने, तवतींस देवताओं ने, यम देवताओं ने, तुषित देवताओं ने, निर्माण रति देवताओं ने, परनिर्मित वशवर्ती देवताओं ने, ब्रह्म कायिक देवताओं ने यह घोषित किया। मृगदाव ऋषिपत्तन वाराणसी में भगवान बुद्ध ने अनुत्तर धर्म चक्र का प्रवर्तन किया है, जिसे न कोई श्रमण, न कोई ब्राह्मण, न कोई देवता, न कोई मार, न कोई ब्रह्मा और इस लोक का न कोई और पलट सकता है। तत्काल उसी मुहूर्त में, उसी क्षण में यह समाचार ब्रह्म लोकों में भी पहुंच गया। उसी समय 10,000 विश्व चक्र या लोक धातु भी कंपायमान हो उठे और देवताओं की आभा से भी अधिक प्रमाण रहित अवभास लोक में प्रकट हुआ। तब भगवान बुद्ध ने यह औपचारिक उच्चारण किया। वास्तव में कौंडिन्य को परम पद का ज्ञान प्राप्त हो गया है। वास्तव में कौंडिन्य को परम पद का ज्ञान प्राप्त हो गया है। इस प्रकार आयुष्मान कौंडिन्य का नाम अय्या कौंडिन्य अर्थात परम पद का ज्ञानी कौंडिन्य पड़ा। अय्या कौंडिन्य की प्रव्रज्या। तब आदरणीय अय्या कौंडिन्य धर्म का दर्शन कर, धर्म ग्रहण कर, धर्म ज्ञात कर, धर्म में प्रवेश कर, सारे संदेह दूर कर, सारी शंकाओं का समाधान कर, भगवान बुद्ध की शिक्षा में स्वयं उत्पन्न पूर्ण विश्वास प्राप्त कर भगवान से इस प्रकार बोले, क्या मैं भगवंत से प्रव्रज्या प्राप्त कर सकता हूँ? क्या मैं पूर्ण उपसंपदा प्राप्त कर सकता हूँ? भगवान ने कहा, भिक्खु आओ, धम्म अच्छी तरह से सिखाया गया है। दुख का अंत करने के लिए पवित्र जीवन यापन का सही अभ्यास करो और यही आदरणीय कौंडिन्य की उपसंपदा थी। तब भगवान बुद्ध ने अन्य 4 भिक्षुओं को शिक्षा दी तथा वक्प, भद्दीय, महानाम एवं अस्सजी ने भी जागृति प्राप्त की और भगवान बुद्ध से प्रव्रज्या तथा उपसंपदा प्राप्त की। प्रथम प्रवचन के उपदेश की पृष्ठभूमि। कल हमने यह उल्लेख किया था कि जागृति के पश्चात बुद्ध औरों को शिक्षा देने से हिचकिचाए। उन्हें पता था कि धम्म अगाध है, इसका दर्शन करना अथवा इसे प्राप्त करना कठिन है, यह सबसे शांतिपूर्ण लक्ष्य है तथा अन्य सभी लक्ष्यों से श्रेष्ठतर है, यह मात्र विचारण से नहीं पाया जा सकता। और बुद्ध ने लोगों को इस संसार में आसक्तियों में बंधे देखा। उनके लिए सच्चाई देख पाना और निर्वाण तक पहुंचना कठिन होगा। उन्होंने सोचा, और यदि मैं धम्म सिखाता हूं तो लोग मुझे समझ नहीं पाएंगे और यह मेरे लिए थकाऊ और कष्टप्रद होगा। उसी समय ब्रह्मा सहमपति ने बुद्ध के विचारों को जान लिया। वे बुद्ध के पिछले जन्मों में उनके सान्निध्य में थे। उन्होंने महसूस किया कि यदि गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्रदान न करने का निर्णय ले लिया तो यह विश्व खो जाएगा। तो वह बुद्ध के पास गए और नमन करने के बाद बोले, महाप्रभु, आप लोगों को धम्म की शिक्षा दीजिए। यहाँ ऐसे भी जीव हैं जिनकी आँखों पर केवल हल्की सी मैल है और वे धम्म न सुन पाने के कारण बर्बाद हो रहे हैं। उनमें से कुछ को पूर्ण जागृति प्राप्त होगी। बुद्ध ने ब्रह्मा सहमपति का अनुनय सुना। प्राणियों के लिए करुणा के कारण उन्होंने अपने जागृत चक्षुओं से विश्व का सर्वेक्षण किया, जैसे एक नीले, लाल या सफेद कमलों वाले तालाब में कुछ कमल अंकुरित होकर पानी में डूबे ही बढ़ते हैं, किंतु उसके ऊपर नहीं आते। कुछ अन्य कमल अंकुरित होकर पानी के भीतर बढ़कर पानी की सतह पर आ जाते हैं, और कुछ अन्य कमल अंकुरित होकर पानी में बढ़कर पानी के ऊपर स्पष्ट बाहर पानी से भीगे बिना खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार आँखों में कम मैल वाले और अधिक मैल वाले, उत्सुक इंद्रियों वाले और सुस्त इंद्रियों वाले, अच्छे गुणों वाले और बुरे गुणों वाले, आसानी से सीखने वाले तथा कठिनता से सीखने वाले जीवों को उन्होंने देखा। यह सब देखने के बाद उन्होंने ब्रह्मा सहम्पति से कहा, अमरत्व के द्वार पूरी तरह खुले हैं, जो सुने उनमें आस्था उत्पन्न हो। यदि मैं इस गूढ़ धम्म की शिक्षा देने से हिचकिचा रहा था तो वह इसलिए था कि मुझे लगा कि शिक्षण कार्य बहुत थकाऊ होगा। उसके बाद बुद्ध ने विचार किया कि सबसे पहले किसे शिक्षा दें। दोनों शिक्षकों आलार एवं उद्दक, जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया था, की मृत्यु हो गई थी और उन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। तब यह बात उनके मन में आई, जब मैं अपनी तपस्या में संघर्षरत था तो मेरी परिचर्या करने वाले वे 5 तपस्वी बहुत ही उपकारी थे। लगता है मुझे सर्वप्रथम उन्हीं को शिक्षा देनी चाहिए। अतः बुद्ध उन 5 तपस्वियों के पास गए और उन्हें अपना प्रथम उपदेश दिया, जिससे हमने यह प्रवचन प्रारंभ किया है। जैसा कि हमने देखा, यह उपदेश मध्यम मार्ग, जो निर्वाण की ओर जाता है, का वर्णन करता है। यह मध्यम मार्ग चरम पंथों से बचता है। तो हम देखते हैं कि हमें एक संतुलित तरीके से काम करना चाहिए। यदि हम अत्यधिक कामुक सुखों की तलाश में फंस जाते हैं तो हम कभी भी समुचित रूप से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं होंगे, और न ही हमें बहुत कठोर होना चाहिए। यदि हम ज़्यादा जबरदस्ती करेंगे तो वह भी ध्यान के लिए एक विकर्षण होगा। बुद्ध ने अष्टांगिक आर्य मार्ग का, जिसकी हमने कल चर्चा की, का वर्णन किया, परंतु अपने आप में अष्टांगिक आर्य मार्ग अधूरा है। अतः बुद्ध ने उसके बाद 4 आर्य सत्य दिया, और उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना किसी आचार्य की सहायता से जो उन्हें संबोध मिली, वह तभी मिली जब उन्होंने 4 आर्य सत्यों को भली भांति समझा। सर्वप्रथम कौंडिन्य थे जिन्होंने बुद्ध की शिक्षा को स्वयं समझा। वे ही सर्वप्रथम थे जो एहि भिक्खु, आओ भिक्खु शब्दों से प्रव्रज्ञा पाकर भिक्खु बने। अन्य 4 तपस्वियों के लिए कुछ और प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, जिसे बुद्ध ने अगले 4 दिनों में दिया। उन्होंने भी जागृति प्राप्त की और प्रव्रज्ञा ली। भगवान बुद्ध ने 5वें दिन दूसरा प्रवचन अनत्ता लक्षण सूत्र, अर्थात अनात्म लक्षण सूत्र दिया। इस उपदेश के अंत में सभी 5 भिक्खुओं ने पूर्ण जागृति अर्थात अरहत्व प्राप्त किया। सातागिरी, हेमवत एवं काली की कथा। जब बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया तो उसे अन्य लोकों के भी कई प्राणी सुन रहे थे, जैसे 500 भूचर यक्ष अपने नेता सातागिरी के साथ। किंतु सातागिरी प्रवचन पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वह अपने मित्र हेमवत नामक यक्ष के बारे में सोच रहा था। उनमें यह सहमति हुई थी कि यदि कुछ भी असामान्य हुआ तो वे एक दूसरे को बताएंगे। सातागिरी ने जैसे ही प्रवचन सुना, उसने सोचा कि गौतम अवश्य एक सच्चे बुद्ध होंगे। उनकी शिक्षा अच्छी एवं प्रभावी थी। उसने अपने मित्र को आमंत्रित करना चाहा कि वह भी बुद्ध के धर्मोपदेश, अष्टांगिक आर्य मार्ग तथा चार आर्य सत्य के बारे में सुने। अब जब बुद्ध अपना पहला धर्मोपदेश दे रहे थे, हिमालय में भी, जहां सातागिर का मित्र हेमवत 500 अनुयायियों के साथ रह रहा था, 32 चमत्कार प्रकट हुए। फलों के वृक्ष बेमौसम फल गए, वृक्षों में बेमौसम पुष्प प्रकट हो गए इत्यादि। हेमवत अपने मित्र को इन चमत्कारों को देखने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। यक्ष होने के कारण सातागिरि एवं हेमवत वायु के माध्यम से आ जा सकते थे, तो विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर आते हुए वे राजगृह, पाली में राजगह, आधुनिक राजगिर के ऊपर मिले। जैसे ही वे मिले, उसी समय काली नाम की एक महिला अपने महल के शीर्ष पर बरामदे में आई। मौसम गर्म था और घर में उमस थी। वह गर्भवती अवस्था के अंतिम चरण में थी और उसे कठिनाई हो रही थी, इसलिए वह ताजी शीतल हवा का आनंद लेने ऊपर चली गई और उसने उन दोनों यक्षों को बुद्ध की शिक्षा पर चर्चा करते सुना। हेमवत अपने मित्र से पूछ रहा था, बुद्ध के क्या गुण हैं? क्या गौतम वास्तव में एक बुद्ध है? वे जो उपदेश देते हैं, क्या उनका पालन स्वयं भी करते हैं? और उसने धम्म और अष्टांगिक आर्य मार्ग के विषय में भी इस प्रकार के कई प्रश्न पूछे। सयाजी उबाखेन ने यह कथा 1950 में आकाशवाणी अर्थात एक रेडियो वार्ता में बताई और इस स्थान पर उन्होंने कहा, यह चर्चा सुनकर काली अल्पपथित या शॉर्ट सर्किटेड हुई और जागृति के पहले चरण में स्थापित हो गई। सयाजी ने ध्यान दिलाया कि यदि हम इस कहानी की गहराई में जाएं, तो हम देखेंगे कि यद्यपि काली वाराणसी से बहुत दूर रहती थी, किंतु वह केवल दो यक्षों में परस्पर वार्तालाप के माध्यम से धम्म सुनकर श्रोतापन्न हो गई। वह ऐसे सभी शिष्यों में सबसे अग्रणी थी जिन्होंने सीधे बुद्ध के अतिरिक्त किसी और से धम्म सुनकर जागृति प्राप्त की। दोनों यक्षों की कहानी भी शिक्षाप्रद है। अपने पिछले जन्म में वे भिक्षु थे और भिक्षुओं के नियमों में पारंगत भी। जब भी नियमों के अर्थ के विषय में असहमति होती, तो वे अपना निर्णय देते। एक दिन दो भिक्षुओं के बीच असहमति हुई। उनमें से एक अपना विहार छोड़कर वर्षावास तक इन दोनों विद्वान भिक्षुओं के साथ रहने आ गए। यद्यपि उनका अपराध मामूली था, किंतु वे गलत थे और उन्हें अपने पक्ष में करना चाहते थे। वे उनके साथ वर्षावास तक एक बहुत ही आज्ञाकारी परिचारक की तरह रहे। अंत में वे दोनों स्थविरों के पास विदा लेने गए, उनको प्रणाम किया तथा उनसे एक अनुरोध किया। यदि कोई भिक्षु यहाँ आए और अमुक नियम के विषय में आपसे निर्णय मांगे, तो कृपया आप चुप रहें और कुछ न कहें। उन्होंने चुप रहकर अपनी सहमति जताई। इसके बाद भिक्षु अपने विहार में वापस चले गए तथा अपने अपराध के विषय में दूसरे भिक्षु के साथ विवाद किया। तब दूसरे भिक्षु निर्णय के लिए दोनों स्थविरों के पास आए। दोनों स्थविर मौन रहे और वे हार गए, तो भिक्षु यह कहते हुए वापस आ गए, बुद्ध का शासन इन दो स्थविरों के द्वारा बर्बाद हो गया है। अब यह दोनों स्थविरों के लिए एक गंभीर अपराध था, इसी कारण मरणोपरांत वे यक्ष हुए। यहाँ पर सयाजी ने सतर्क किया, न केवल वे दोनों स्थविर यक्ष हुए, अपितु उनके अनुयायी भी यक्ष हो गए, प्रत्येक स्थविर के साथ 500। सयाजी उबाखी ने चेतावनी दी, सावधान रहें क्योंकि जब आपका आचार्य गलत हो जाता है तो आप भी गलत हो जाएंगे। शिष्य अपने आचार्य के ही पदचिन्हों पर चलता है। हम यहाँ अपनी साधना में भगवान बुद्ध के सर्वप्रथम धर्मोपदेश में दी गई शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे हैं। हम अष्टांगिक आर्य मार्ग पर चलते हुए चार आर्य सत्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं। हम शील, पाली में सील अर्थात शिक्षा पदों के पालन के माध्यम से अपना नैतिक विकास कर रहे हैं। पहले कुछ दिनों में आनापान ध्यान के माध्यम से चित्त एकाग्रता विकसित कर रहे हैं। शीघ्र ही विपश्यना ध्यान के माध्यम से अंतर्दृष्टि के लिए काम करेंगे। श्वास पर ध्यान की विधा को समझाने के लिए आचार्य बुद्ध घोष ने अपनी रचना विशुद्धि मार्ग में अनेक उपमाएं दी हैं। एक तुलना द्वारपाल की उपमा से है। जिस प्रकार एक द्वारपाल नगर के अंदर और बाहर के व्यक्तियों की जांच पड़ताल नहीं करता और उनसे यह नहीं पूछता कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, आपके हाथ में क्या है, क्योंकि यह उसका कर्तव्य नहीं है, किंतु उस प्रत्येक व्यक्ति की जांच पड़ताल करना उसका कर्तव्य है जो द्वार पर पहुंचता है। इसी प्रकार आने वाली श्वासें जो अंदर चली गई हैं और निवर्तमान श्वासें जो बाहर चली गई हैं, उन्हें जानना साधक के कर्तव्य के बाहर है, किंतु हर बार जब वे नासिका के द्वार पर पहुंचती हैं तो उन्हें जानना उसके कर्तव्य के अंतर्गत आता है। मन पर नियंत्रण। संभवतः आपने पाया है कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। सयाजी उबाखे ने अपने एक प्रवचन में यह अनुदेश दिया। संभवतः आपने चलचित्रों में काउबॉय अर्थात अमरीकी किसानों को जंगली घोड़े वश में करते हुए देखा होगा। घोड़े हमेशा लात मारते, कूदते और संघर्ष करते हैं, किंतु लंबे समय तक कभी स्थिर नहीं रह पाते। तो मन भी उन जंगली घोड़ों की तरह है और किसी वस्तु विशेष पर लंबे समय तक टिक नहीं पाता। इसके अतिरिक्त यह कभी भी लंबे समय तक शरीर के भीतर रमण नहीं करता। ऐसा इसलिए कि जन्म से ही हमारा मन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सदैव बाहरी गोचर वस्तुओं में रमता है, जैसे दृश्य, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श तथा विचार। आनापान ध्यान में हम प्रत्येक आश्वास प्रश्वास अर्थात आती एवं जाती हुई श्वास का पता करने, उसे जानने, उसका संज्ञान लेने तथा उसका निरीक्षण करने का अभ्यास करते हैं। इसका उद्देश्य इस चंचल एवं बेचैन मन को किसी विशेष वस्तु या आधार पर खींचकर वापस लाने के लिए एक साधन प्रदान करना है, जिससे मन नियंत्रण में लाया जा सके। जैसे किसी ऐसे बछड़े को जो अभी पालतू नहीं है खूंट में बांधना पड़ता है, जिससे वह इधर उधर दूर भटकने न पाए, उसी प्रकार मन को शांत एवं स्थिर रखने के लिए खूंट अर्थात नाक के आधार पर रस्सी अर्थात प्रत्येक आश्वास एवं प्रश्वास की जानकारी से बांधना आवश्यक है। उस मनोदशा को प्राप्त होने पर व्यक्ति समाधि में पहुंचता है। समाधि के बाद ही विपश्यना, पाली में विपश्यना का अभ्यास किया जा सकता है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध को भी समाधि प्राप्त करने में कठिनाई हुई। जब उन्होंने ध्यान में तब तक बैठे रहने का प्रण लिया जब तक उन्हें जागृति प्राप्त न हो जाए। यह कठिनाई उन्हें रात्रि के प्रारंभिक भाग में हुई। वे मार की शक्तियों से विचलित हो गए थे और उनका मन यहाँ वहाँ भटकने लगा था। जब जाकर वे समाधिस्थ हुए तभी उन्हें सही ज्ञान प्राप्त हुआ जिससे वे पूर्ण जागृति प्राप्त करने में सक्षम हुए। अतः आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि समाधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक क्रमानुसार अर्थात एक क्रमिक प्रशिक्षण, एक क्रमिक कार्यकलाप, एक क्रमिक अभ्यास है। हमें एक एक कदम करके आगे बढ़ना होगा। सील, समाधि और पहिया, हमारे पास ये तीन मूलभूत महत्वपूर्ण घटक है। सील आधार है, यह वह साधन है जिससे शारीरिक एवं वाचिक अनैतिकता को नियंत्रण में रखा जाता है। आनापान ध्यान के माध्यम से अर्जित समाधि वह साधन है जिससे अनैतिक विचारों को स्थगित किया जाता है। विपस्सना ध्यान के माध्यम से अर्जित पहिया सभी अशुद्धियों को चरणों में पूरी तरह समाप्त करती है। जब किसी व्यक्ति में सील होता है केवल तभी उसे समाधि प्राप्त हो सकती है और केवल समाधि के साथ ही वह पहिया प्राप्त कर सकता है। समाधि के बिना पहिया नहीं प्राप्त की जा सकती और सील के बिना कोई समाधि नहीं। शुद्धिकरण के सात सोपान। तत्पश्चात सयाजी उबाखी ने शुद्धिकरण के सात सोपानों का स्पष्टीकरण किया। इन्हें भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र, पाली में सारिपुत्र, तथा मैत्रायणी पुत्र पूर्ण, पाली में मंताणी पुत्र पूर्ण नामक भिक्षु के बीच एक चर्चा में पाया जाता है। मंताणी कपिल वस्तु के अय्या कोंडय्य की भगिनी थी। शुद्धिकरण के इन्हीं सात सोपानों का आचार्य महाबुद्ध घोष की विशुद्धि मार्ग, पाली में विशुद्धि मग्गो, की संरचना में प्रारूप की तरह उपयोग किया गया है। जब भंते सारिपुत्र ने भंते पुण्य से इस विषय में पूछा कि किसी व्यक्ति के बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करने का क्या कारण है, तो भंते पुण्य ने शुद्धिकरण के सात सोपानों के माध्यम से अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने इन सोपानों की तुलना सात अलग अलग रथों से की जिन्हें यदि कौशलाधिपति प्रसेनजीत, पाली में पसेनदि, को तत्काल राज्य कार्य के लिए श्रावस्ती से साकेत जाना पड़े तो वे उन्हें क्रमशः उनका उपयोग करेंगे। वे ये सात रथ शुद्धि के सात चरणों की तरह हैं। ये हैं एक शील विशुद्धि, दो चित्त विशुद्धि, तीन दृष्टि विशुद्धि, चार संदेह पर विजय द्वारा विशुद्धि, पांच मार्ग क्या है और क्या नहीं है इसके ज्ञान और दर्शन की विशुद्धि, छह मार्ग पर प्रगति के ज्ञान और दर्शन से विशुद्धि, और अंत में सात ज्ञान और दर्शन की विशुद्धि। सयाजी उबाखी ने स्पष्ट किया, नैतिकता की शुद्धि ही मूल आधार है। इसका अर्थ है शारीरिक और वाचिक आचरण की पवित्रता। इसमें सिद्धि प्राप्त करने के बाद ही समाधि द्वारा मन की शुद्धि अर्जित हो सकती है। मन की शुद्धि का अर्थ विचारों की पवित्रता है। विचारों की शुद्धि के बाद के अन्य सभी सोपान समुचित ज्ञान शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। उन्हें विपस्सना ध्यान या अंतर्दृष्टि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो फिर यहाँ आप समाधि के महत्व को देख सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आप विपस्सना का सफलतापूर्वक अभ्यास नहीं कर सकते। आज प्रातः बस इतना ही। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्थु भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सोत्थु भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदासोत्थु भवन्तु ते साधु साधु साधु।